संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के ज्ञान में भगवान महान। समय साल परमागम कलश 126 दसम्बर अधिकार। इसमें ये बताया गया है कि आत्मा चिद रूप है और आश्रव जड़ रूप है, इन दोनों के बीच दारुण दारुणेन निर्दयता से भेद विज्ञान करके फिर पर से हटकर स्वा में लगकर जो निरंतर अभ्यास करते हैं लगने का, उनको द्वितीय चुतः वे दूसरे से चुत हो जाते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं और अपना विज्ञान घन जो भगवान आत्मा है उसका आश्रय करते हैं। इस कलश को अपन ने पढ़ा था कल, बनारसी दास जी ने इसका जो पद्यानुवाद किया है वो भी इसी आशय का है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, उसे भी पढ़ लेते हैं। शुद्ध स्वच्छंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतीक्षण आरा अंतर भेद स्वभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप दुफारा सोजन के उर उपज बात सुतीक्षण आरा के द्वारा जिसने स्व और पर के बीच भेद विज्ञान किया है वह उसको परसंग और पर का सहारा रुचता नहीं है। रुचता नहीं माने अच्छा नहीं लगता है, इतना ही नहीं है। अच्छा नहीं लगना और बुरा नहीं लगना ये तो राग द्वेष का काम है, और रुचना है वो श्रद्धा के अर्थ में है, माने उसकी श्रद्धा में पर का साथ लेने का श्रद्धा बिल्कुल ही नहीं रहती है। और आत्म को अनुभव करके भी आत्मा का अनुभव करके अनंत आनंदित होते हैं, और जो परमात्म धारा है उससे को परख कर उसमें आनंदित होते हैं। बात भेद विज्ञान की है, जरा हम विचार करें कि मुक्ति के मार्ग में कोई आपसे पूछे कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम मुक्ति के मार्ग में लग जाएं और हमारे कार्य की सिद्धि हो, माने हमें मुक्ति की प्राप्ति हो, बस हमको चार लाइन में एक पैरे में समझा दो तो आप क्या कहेंगे? अथवा हमको कहेंगे एक शब्द में हमें बताओ कि वो मुक्ति का मार्ग क्या है, तो हम पूरी शक्ति के साथ कह सकते हैं कि भेद विज्ञान। ये कह करके मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि और कुछ तो नहीं, कि साथ में और कुछ भी जरूरत पड़ेगी, क्यों उपवास करना पड़ेगा कि नहीं, तो नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्यों भरत चक्रवर्ती ने नहीं किया था ना और उनका काम हो गया था। तीर्थ यात्रा व्रत तप शील संयम जो भी है, जो इसके साथ भूमिकानुसार अत्यंत आवश्यक है वो तो इसके साथ होगा ही, और वो भेद विज्ञान में ही शामिल है। तब उसे छोड़ दिया, मान लो कि चौथे से पांचवें अनुष्ठान में आएगा तो जो पर्याय में जितनी निर्मलता होगी, बाहर अनुमृत महामृत जो भी होंगे वो होंगे, है ना, ईडिया समिति आदि पालेगा, छठवें सातवें अनुष्ठान में आएगा तो जो भूमिका के अनुसार होते हैं वो तो करने ही पड़ेंगे ना, करने नहीं पड़ेंगे वे तो होंगे, लेकिन लोग कहते हम क्या करें, सामने वाले का पूछ रहा है क्या करें, तो उसको एकमात्र है कि भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान के बिना सब कुछ अनाथ है, और भेद विज्ञान से सब कुछ सनात है। देखो भेद विज्ञान पर से भिन्न अपने आत्मा को जानना वो अनुभूति पूर्वक वो भेद विज्ञानी है, अनुभव हुआ और फिर लगातार यदि अंतर्भूत में आत्मा में लीन रहे तो केवल ज्ञान हो जाएगा और फिर अंतर्भूत में शुद्ध दशा हो जाएगी। अन्ना जी से पूछना, मेरे ख्याल जो 5-7-8 अंतर्भूत होते हैं जिन्हें पूरा यहां से लेके वहां तक मोक्ष हो जाता है, क्या वो भरत चक्रवर्ती कुछ बेटों की चर्चा आती है, मतलब ये कितने अंतर मुहूर्त लगते हैं वो उनकी क्लास में उनसे समझ लेना, लेकिन ज्यादा नहीं है और कितने का भी सवाल नहीं है, उन सबका जोड़ लगाओ तो मिलके फिर वो एक अंतर मुहूर्त ही होता है, समझिए ना। छोटे छोटे अंतर मुहूर्त होते हैं और 2-4-5-10 सही क्या फर्क पड़ता है, मैं उसमें नहीं उलझना चाहता हूं, लेकिन जब मुक्ति का मार्ग इतना शॉर्ट है तो ये जो लंबी लंबी क्रियाएं हैं ये उसमें संभव ही कैसे है, क्या जो हमने उपवास यात्रा 3 महीने के उपवास कर लो ये और फिर ये जो भी बहुत बहुत चीजें हैं ना, तपस्याएं पर्वत के नीचे नदी के किनारे हैं ऊपर वृक्ष के बरसात में वृक्ष के नीचे घोर तपस्या करे काने में पीले ठुके ऐसा ऐसा हमें लोग उपसर करने आए, ये तो है ही नहीं ना कुछ भी, तो उतने में काम हो गया ना। और ये तो करोड़ों में एकाध को होते हैं कौन ये उपसर उपसर तो करोड़ों में भी मैं कहता हूं असंख्य में एकाध को होते होंगे, क्यों कि जो ऐसा मोक्ष मार्ग में चलने वाला होता है वो अधिकतर जीव स्वातिशय पुण्य के धनी ही होते हैं। एक आज का कोई पुराना कवि का कोई पड़ा हो रहा उदय में आ जाए तो शास्त्रों में तो आप कहें वही वही भरे पड़े हैं, तो इसलिए भरे पड़े हैं कि तुम उन परिस्थितियों में भी चिगना जाओ ये बताने के लिए, जिनको बिल्कुल भी प्रतिकूलता नहीं हुई, ऐसे जो असंख्य जीव उनकी चर्चा ही नहीं करी, क्या ऐसी सहज अनुकूलता रहती है, होते ही नहीं है। अब वो उतने समय में वो जीव मोक्ष चला जाएगा तो ये क्रियाएं जो क्रियाएं नहीं करनी पड़ेंगी, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 3 प्रकार का मोक्ष मार्ग बताया ना, तो उसमें एक तो 3 कारण बताए, एक तो ये बताया कि जिनके बिना मोक्ष हुए ही नहीं, पर जिनके होने पर भी मोक्ष हो गए और नहीं भी हो गए, जैसे मुनि नंद निगम्बर दशा धारण करना, इसके बिना तो मोक्ष नहीं होगा और धारण करने पर हो गए और नहीं भी हो गए। एक कारण दे कि जिनके नहीं होने पर भी हो जाए और होने पर भी नहीं हो गए, ये मृत्युबा शादी लिए हो न हो और नहीं हो तो अभी हो जाए, ये उससे भी गए भी थे। और तीसरे वे कि जिनके होने पर नियम से हो और जिसके नहीं होने पर नियम से नहीं हो, वो सम्मत असन ज्ञान चारित्र हैं। और वे भेद विज्ञान में तीनों आ जाते हैं, माने पर से भिन्न अपना आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान हो गया और पर से भिन्न अपने आत्मा को मानना सम्मत दर्शन हो गया और पर से भिन्न अपने आत्मा में लीन हो जाना तो ध्यान हो गया, वही भेद विज्ञान हो तो तीनों आ गए उसमें जाओ। तो असली कारण तो वही रहा ना, अब एक समस्या है कि इन सबको मोक्ष मार्ग में कारण के रूप में क्यों कह दिया, तो इसलिए कह दिया कि एक जीव ने मोक्ष मार्ग शुरू किया और वहां से लेकर के जब तक वो मोक्ष नहीं गया उसमें 10-5 जितने भी भव भी लग सकते हैं, अरबों बरस भी लग सकते हैं, और ऐसा भी हो कि एक ही भव हो और बरस अरब हो, और बरस एक हो और भव अनेक हो, क्या समझिए ना, क्योंकि संसद में भव बदल सकता है। और जो सागरों की आयु है ना, मनुष्य में भी एक कोड़ा कोड़ी सागर की एक कितना की है, एक कोड़ा कोड़ी क्या है पूर, एक कोड़ी जो पूर है ना उतना तो हो ही जाए, तो वो भी अरबों बरस है। तो इतनी लंबी आयु भी होगी, इतना भी हो एक क्षण में भी जा सकता, तो इतनी लंबी आयु होगी तो जब से शुरू किया तब से, और वो आयु इतनी लंबी भोगेगा तो उसके बीच में जहां जहां जितने काल रहेगा, तो फिर यदि आत्मा अंतर में आत्मा में चला जाता अंतर्मुहूर्त को, तो केवल ज्ञान हो जाता, मोक्ष चले जाते। तो वो तो हुआ नहीं, तो क्या क्या होगा, उन सब क्रियाओं को उनने मुख्य मार्ग व्यवहार से कह दिया। तो बस उसका जब छत में सात महीने होगा तो फिर तो बस आदि ऑटोमेटिक होंगे ही, पीढ़िया समिति भाषा समिति वगैरह ऑटोमेटिक होंगे ही, आप समझेंगे ना। और वो जो जो परिणतियां हैं वो उनको गिना दी। अब प्रथमान योग में जब उनका इतना लंबा बड़ा पीरियड है, तो उसमें जो जो हुआ आदिनाथ के साथ समझ लीजिए 1000 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तो 1000 वर्ष में जो जो हुआ उन्हें सबको मुख्य मार्ग में गिना दिया। ये है जैसे हम कहते हैं कि एक परीक्षा चलती है, तो परीक्षा के टाइम पर विद्यार्थी रात को जगते हैं तो पढ़ने के लिए, और सोते हैं तो वो भी पढ़ने के लिए, कहते ना क्यों कि सोए नहीं तो फिर वो नींद ही नींद आती रहे तो पढ़ ही नहीं सकते। कम खाते हैं तो पढ़ने के लिए, समझे ना, और बिल्कुल ही खाना नहीं छोड़ते हैं तो भी पढ़ने के लिए। जैसे उसकी हर क्रिया को, खाने को पीने को भी सोने को भी पढ़ाई का कारण बता दिया जाता है, ऐसे ही उन जीवों की हर क्रिया को वो मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। इतनी सी बात है, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही है, तो मोक्ष मार्ग ही जो करेगा वो सब मोक्ष मार्ग। वास्तव में वो कारण है ही नहीं, तो फिर उनके करने का उपदेश दिया, जो कारण नहीं उन्हें करने का उपदेश दिया जाएगा, वे तो होते हैं करने जैसी चीज ही नहीं है, करने लायक तो एकमात्र भेद विज्ञान है, ये इसका अभिनंदन है असली। अब सुनो कि वो भेद विज्ञान देह से राग से जो भी किया, अब करना तो जब तक वो भेद विज्ञान निर्णय रूप नहीं हुआ, सम्यक निर्णय रूप, ये मैं हूं ये नहीं हूं ऐसा, तब तक तो वो प्रयत्न किया जाएगा कौन कि हम समझें उस बात को, समझने के रूप किया जाएगा। अब वो बिल्कुल पक्का निर्णय हो गया और समझ में बात आ गई, तो उस भावना को दोहराते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो फीकी ना पड़ जाए। भाषा ऐसी भी कह सकते हैं कि दोहराते रहना पड़ेगा, और ऐसी भी कह सकते हैं कि वो इतनी अच्छी चीज है जो उसने आज तक नहीं की थी, और वो इतनी रुचि के अनुकूल है, दोहराता रहना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक दोहराता ही रहेगा, वो उससे छूटेगा ही नहीं। तुमने कोई चीज खाई और बहुत ही बढ़िया लगी और स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल लगी, तो फिर तुमको खाते रहना पड़ेगा उसे, क्यों, प्रेम से खाओगे। ये जो पड़ेगा वाली भाषा तो जैन दर्शन की है ही नहीं। तो भेद विज्ञान, वो भी भेद विज्ञान है कौन, कि जब भेद हमने जानने का संकल्प करके उसके लिए प्रयत्न किया, तो वास्तव में वो दशा में तो भेद विज्ञान हुआ ही नहीं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं ना, असली भेद विज्ञान वहां कहां है। और जब वो हमें पर से भिन्न आत्मा ख्याल में आ गया, अनुभूति में आ गया, तब वास्तव में भेद विज्ञान उदित हुआ। अब वो कब तक तो बनारसी दास लिखते हैं भेद ज्ञान कबलों भलो कि जबलों मुक्ति न हो, मोक्ष न हो जाए तब तक, मोक्ष माने चार घातिया कर्मों से मुक्त न हो जाए, माने जब तक भेद विज्ञान की भावना कब तक हो ना, भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया, इस छंद आएगा ना आगे, भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया, इसमें कलश आगेगा घड़ा जल्दी जल्दी आएगा। नहीं है ना 130 कलश पेज नंबर 302 समय सार में, भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया तावत यावत पराश्चुत्या ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भेद विज्ञान की भावना अविच्छिन्न धारा से तब तक निरंतर ध्याना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए माने ज्ञान माने भगवान आत्मा, उसमें जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय वो उसको न जान ले, वो जान ले न, वो न जानती रहे, जान ले माने जानना हो, जानती रहना माने ध्यान। और अकेली वही बात नहीं है कि जब हम ऐसे आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तब, जब आप खाना खा रहे चल रहे फिर रहे तब भी वास्तव में वो भेद विज्ञान की धारा निरंतर अंदर में बहती ही रहती है, जहां दिखे वहां तो बहती ही रहती है, जहां ना दिखे वहां भी बहती रहती है। देखो एक बहुत बड़ा जलाशय है और वहां से पानी, अब यहां है ना एक बांध है जयपुर, पानी आता है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर पे, और वहां पर जो बड़े बड़े वो पड़े हुए ना जिनमें पानी आता है पाइप, तो उन पाइपों में तो पानी अंदर भरा ही पड़ा है, वो निरंतर बह रहा है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, रूखा रूखा सूखा सूखा दिखता है, पर अंदर बह रहा है ना, लेकिन कहीं से उसमें एक छेद हो जाए तो कैसा फब्बारा जैसा निकलता है, तो हमें मालूम पड़ता है, और वो छेद नहीं हो तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि यहां पानी वानी है कि नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्माओं के 24 घंटे अंदर भेद विज्ञान की धारा ऐसी बहती रहती है, जब वो विकल्पों में फूटती है, वाणी में फूटती है, मन के विकल्पों में फूटती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हुआ भेद विज्ञान। देखो एक अरबपति आदमी है और वो यहां से कहीं बाहर गया और वहां उसका सारा सामान चोरी हो गया, जितना पैसा था वो सब बिल्कुल सब चला गया, कुछ नहीं रहा, ऐसा खड़ा रह गया, 5 रुपए भी जेब में नहीं थे, तो रोने लगता होगा, क्यों कब कल क्या खाऊंगा, बिल्कुल 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 शांत चित्त, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसे, क्यों नहीं पड़ता, क्यों कि उसके अंदर में मैं अरबों का मालिक हूं, ऐसी धारा निरंतर बह रही, और हम ये कहते क्या हो, देखो इतने सब चला गया कुछ नहीं, ये ऐसा कह रहा खिलखिला के हंस रहा है, अभी फोन है ना जेब में, अभी फोन करूंगा और बरस जाएगी सब चीजें, आ जाएंगे लोग दौड़े दौड़े चले आएंगे और पैसा आ जाएगा, कुछ नहीं रखना, क्यों आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इतना ही कह दूं कि मैं अंबानी हूं, कि मैं कोई भी ऐसा नाम ले दूंगा तो सारा दुनिया जहां होगा वहां हमारे पैसा बरसने लगेगा, कोई पूछेगा ही नहीं, क्या ना तो वैसे थोड़ी वो मौसे कहता फिरता है, मौसे तो बोलेगा तब मालूम पड़ेगा ना, मन में भी विकल्प नहीं आता है, लेकिन अंदर में मैं क्या हूं, ये अरबपति हूं, जब ये धारा बह सकती है और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये क्यों नहीं बह सकती, इसलिए मैंने रश्मि चिट्ठी में बहुत विस्तार से ये बात लिखी है टोडरमल जी के आधार पर कि भेद विज्ञान 2 तरह का होता है, आत्मानुभूति 2 तरह की होती है, ये आत्मानुभूति ही है, और वहीं एक दूसरा आदमी है जिसके पास 100 रुपया का नोट जिसका चला गया है, जेब कट गई है, वो दहाड़ मार के रोता है, क्योंकि उसके पास भी 100 ही रुपया थे। अब वो ना घर पहुंच सकता है, ना खाने को मिल सकता है, और जानता है कि मैं किसी से कहूंगा तो कोई विश्वास भी करने वाला नहीं है, कोई विश्वास का क्या करे, कहूंगा क्या, है ही नहीं मेरे पास। कैसे 100 रुपये के नुकसान में वो दहाड़ मार रहा, अब वो नहीं मार रहा, तो अपन कहते कि ये मूर्ख है, वो जो समझदार है, समझ ज्ञानी लोग नहीं। अरे ज्ञानी लोग, ज्ञानी ज्ञानी कुछ काम नहीं आएगा, रोटी नहीं मिलेंगी तो नहीं मिलेंगी ज्ञानी को भी। उसके अंदर जो वो अरबपति की धारा बह रही, वो उसके ताकत पर खड़ा है। ऐसे ज्ञानी के अंदर में जो धारा बह रही है उसके बल पर खड़ा है। इसमें एक बहुत अच्छा पद है बनारसी दास का, अंतर के लक्षी अजातीक लक्ष्य पति हैं। अब बनारसी दास के जमाने में आज से 400 वर्ष पहले लखपति होना बहुत बड़ी बात थी, आप सोच नहीं सकते हैं। जब 1 रुपया के 10 बोरी गेहूं आते थे, क्यों अब कहते 10 बोरी आते थे, तो हमने देखा है 1 रुपये के 16 करोड़ 20 किलो। क्या हमारे पिताजी सुनाते थे, हमारी बड़ी बहन के लिए उन्होंने गेहूं इकट्ठे करके रखे थे शादी होने की, वो नहीं हो पाई तो 1 रुपये के 16 किलो खरीदे थे और 25 किलोमीटर दूर ले जाकर 1 रुपये के 20 किलो के भाव से बेचते थे, क्योंकि खराब हो जाएंगे रखे तो क्या करेंगे। तो फिर अकबर के जमाने में, बनारसदास अकबर के जमाने के थे, क्या रेट होंगे, मिल जाएंगे आपको। अब उस वक्त 1 लाख रुपए का मालिक होना, आप कल्पना करो, आज के अरबपति उसके सामने कुछ नहीं है। तो वो कहते लक्ष्यपति माने लाख के मालिक, और वो कहते अंतर के लक्षी, जिसने भगवान आत्मा का लक्ष्य किया है वे असली लक्ष्यपति हैं। अंतर के लक्षी अजाती के लक्ष्यपति हैं, जैसे लक्ष्यपति लोग भीख नहीं मांगा करते, ऐसे ही अंदर के लक्ष्यपति वे बाजार में उनके भिखारी बना नहीं होता। पर से मिलता ही नहीं सकता कुछ, पर को हम दे ही नहीं सकते, पर से हम ले ही नहीं सकते। नीति शास्त्र में बहुत छंद से आए हैं, भर्तहरि का जो है ना नीति शतक में मिलेंगे आपको। अहर निसंबर सति बारी बाहा तथापि पत्रा तृतया पलासा। ऐसा समझ में आ गया, ये ठंड आता है, आता है तो ऊपर की लेन क्या है बोलो, ये तो नीचे की लेन है क्या। अहर निसंबर सति बारी बाहा, मेघ दिना रात बरसे तो भी पलाश के एक डाली में टहनी में 3 पत्ते ही होंगे, 4 नहीं होंगे। पलाश समझते हो, एक पेड़ होता है तो बंदी रखने में क्या बोलते हैं, छोला, जिसमें ऐसे फूल होते हैं बसंती रंग के, केसरिया रंग के, और उनका फिर वो रंग बना करके होली खेलते हैं उससे, उसके एक टहनी में 3-3 पत्ते होते हैं। बरसात आवे भयंकर तो भी 3 पत्ते होंगे, और नहीं आवे कम आवे तो भी 3 होंगे। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या, यदि राजा नवकों से तुष्ट संतुष्ट हो जाए, भाग्यात परम नई विदधाति किंचित, क्या भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकता। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या भाग्यात परम नई विदधाति किंचित, उसे भाग्य से अधिक नहीं दे सकता, क्योंकि बरसात दिना रात हो तो भी पलाश के तो 3 ही पत्ते होंगे। चपरासी से राजा खुश हो जाए तो कह देगा 100 रुपये की तरक्की कर दो इसकी, और ऑफिसर से हो जाए खुश तो कह देगा इसको 2000 रुपये महीने की तरक्की कर दो। अरे खुश तो दोनों से एक सही हुआ ना, लेकिन उसको 100 रुपया और फिर 2000। वो तो उसके भाग्य के अनुसार मिलता है, राजा मजा नहीं देता है, ऐसे नीति के बहुत वाक्य हैं। वहां यद्धात्रा लिखितम ललाट पट्टे तन्मार्जितम कह क्षमा, जो विधाता ने अपने भाग्य में लिख दिया उसे कौन मेट सकता है, अब अपने विधाता नहीं है, कर्मद पर आया है समझ लो है? क्यों कि जो नक्की है वो ही होने वाला है, इस आधार पर उनकी अजातीय वृत्ति पनपती है। तो मैं जिस जहां से मैंने बात शुरू की थी वो ये है कि वेद विज्ञान ही एकमात्र धर्म है और इसके अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जिसके लिए करने का उपदेश दिया जाए, जिसके लिए करने का प्रयास किया जाए। बाकी सब धर्म कहने के हैं और होने के हैं, कहने के हैं और होने के हैं, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है बोलो, क्या समझे तुम? कहने के हैं और होने के हैं बोलो, कौन समझता आपने को होशियार, वो हाथ उठाए। कहने के हैं माने वास्तव में नहीं है, व्यवहार से कहे जाते हैं, और होने के हैं माने भूमिका अनुसार होंगे, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। अंतर समझ में आया ना, कहने के हैं और होने के हैं, अब तो समझ में आ गया, अब बोलो हाँ बस तेरे को कुछ नहीं करना है, ये कहने के हैं और होने के हैं, हो जाएंगे समय पर, समझे ना, कहने के हैं और होने के हैं, और कहीं कुछ भी बात नहीं है, मतलब तेरे माथे पे उनका कोई बोझा नहीं है। तुम तो ये बताओ कि हम क्या करें, तो एक शब्द है भेद विज्ञान, कि भेद विज्ञान हो जाने के बाद क्या करें, कि अब करने को रह क्या गया है, अब तो भेद विज्ञान निरंतर उसी अविरल धारा अंदर में बहती रहेगी। अब भेद विज्ञान करते रहो कि भाषा अब करते रहो, क्या रहना है, है? मैं जुदा हूं, राग जुदा है, ये नक्की हो गया, अब 24 घंटा अंदर में धारा बहती रहेगी, अब इसमें तुझे करना क्या है, वो तो तेरी रुचि की चीज है ना। लोक में जिसे हम सुक्का कारण समझते हैं उसका संयोग की बात निरंतर हमारे उपयोग में बहती रहती है, जैसा अपन ने उस अरबपति का उदाहरण दिया कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जेब कट जाए, सामान चला जाए, और कोई छाती पे बंदूक रखकर कुर्ता पे ये भी उतरवा ले, अकेली एक लंगोटी ले जाए, क्यों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्यों काय के दम पर, यही सब कुछ मैं नहीं हूं है? अभी आपके कैसे ही संयोग चले जाए, शरीर बिखर जाए, शरीर में बीमारी हो जाए, स्त्री पुत्रादि का वियोग हो जाए, तो ज्ञानी को क्या फर्क, बाहर रोना फोना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भूमिका के अनुसार उसे भी जान लेंगे कि अंदर जो अविरल धारा है वो धर्म, धर्म की धारा वो चलती रहती है। देखो चैद रूप्यम जड़ रूपता है ना, कही कही है जड़ रूपता च दधतो कृत्वा विभागं द्वयो अंतर दारुण दारणेन परितो। अब एक आगे वेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, ठीक है, तो वेद विज्ञान से शुद्धात्मा तेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब तेरे को शुद्धात्मा प्राप्त हो गया, अब और क्या चाहिए, कि थोड़ा सा और 1000-2000 रुपया भी मिल जाए साथ में तो ठीक रहेगा ना। तो बस तो समझ लेना तेरे को वेद शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होगा। वो अपना है ना, वो मेले में लड़की जाती, माँ बेटा जाते हैं, खो जाते हैं, क्यों, अब बेटे को माँ और माँ को बेटा मिल गया, अब और क्या चाहिए, क्यों, यदि और चाहे बाकी रह जाए तो माँ बेटे आपस में मिले ही नहीं है? कैसे मिले तो ऐसे जीव को तो बहुत साथ से पुण्य बनता है, बन जाए, ना बने तो ना बने, उदय में आ जाए तो आ जाए, संयोग मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले, पाप का उदय आ जाए, पुराना हुए तो आ जाए, क्या है, क्या फर्क पड़ता है? अब कहते कथम भेद विज्ञानादेव शुद्धात्मोपलब्ध इति चेत है ना, कह 184वीं गाथा का उत्थान का पढ़ रहा हूं मैं कि भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाती है यदि ऐसा कोई कहे तो। कभी कभी चार लाइन की उत्थानिका हो और उसका अर्थ एक लाइन में हो सकता है, कभी कभी एक शब्द की उत्थानिका हो और उसका अर्थ पेजों में न समाए। कल शाम को पढ़ा रहे थे ना शांति जी, क्या पढ़ा रहे थे बताओ, तथ्य क्यों बस इतनी उत्थानिका, एक गाथा की उत्थानिका कितनी है, कौन सी गाथा है 143 जारी, तथा क्यों ये क्या कह रहे हैं कि तुम यहां तक गिनाते आए हो, ये सब बातें करते आए हो, तो मैं पूछता हूं ये सबसे क्या करें इसका, इसे चाहते हैं खाएं पिए ओढ़ें क्या करें, मतलब इन बातों से क्या लाभ है, इसने ऐसे ऐसा, इसने ऐसे ऐसा, इसने ऐसे ऐसा, अब एकदम तुमने 20 छंद लिख दिए हैं, एक से बद्धो दूसरे से अवध है, तीसरे से भात है, तीसरे से अभात है, भात क्या है, चावल बनते हैं ना, अरे उसका नाम भी भात इसलिए है क्योंकि आपको भाता है, देखो वहां तो भाता ही बोलते हैं शिखर जी में, भाता घर कुछ भी खिलाए तो भाता बोलते हैं उसे तो एक कहते हैं कि वो बना हो चाहे नहीं बना हो इससे क्या है, भगवान आत्मा तो ये बंधन की कथा से ही बिल्कुल पार है, बंध कथा ये तेन विसंवादनी होगी, वो बंध की कथा ही विसंवाद पैदा करती है, कौन सी कथा बंध की कथा कि बंधा है कि नहीं बंधा, ये नहीं बंधा भी बंध की कथा है क्या, क्या हमको इनसे क्या मतलब है, मैं तो मेरी दृष्टि में तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आ गया, उसे तुम बंधा मानो बिना बंधा मानो कहो जो कुछ भी हो, बस मैं तो अपने में परिपूर्ण है, तथा छोड़ो बस खत्म, बहुत होगी बातें मैं सुनाऊ, फिर अपन कहते ना एक आकर के आए और सुनाए, सुना बंध जी आपने, नहीं नहीं सुना, सुनाओ भैया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, सोनिया गांधी ने ऐसा कह दिया, आडवाणी ने ये कर दिया, फलानी रथयात्रा निकल गई, वहां इतने मर गए, इतने हो गए, इतने हो गए, हो गई फलानी, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या क्या हो गया है, और सुना दे, जब सुना पूरी सुना करके वो खत्म हो गया, थक गया, क्या करें अब क्या करें, बोलो इतना सब हो गया तो हम क्या करें, ये तथाक्रम का अर्थ है, ये तो जगत है, जगत में होगा, इससे हमें क्या लेना देना है, अब पेज कैसे भर जाएंगे इसमें, पेज ऐसे भर जाएंगे कि जो पीछे प्रकरण कह के ही आए होंगे वो सबके बाद ये बात कह जाई, फिर शुरू शुरू में नहीं कही जा सकती है, तो वो सब चीजें अपन दोहरा सकते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो बंधा है तो क्या हुआ, छूटा है तो क्या हुआ, आप समझे ना, ये क्या है अवध्य स्पष्ट है तो क्या हुआ, उन्होंने बना है कर्मों से तो क्या हुआ मैंने कहते कि कैसा आदमी से कुछ असर ही नहीं पड़ता है, वो बनी जी का आता है ना कि बनी जी परीक्षा दे रहे थे, वहां पर एक उनका पोस्ट कार्ड आया, वो जो परीक्षा का निरीक्षक था ना उसने उसी वक्त जाकर उन्हें दे दिया, उसका खून पटा था, अपने जानते खूंट पटी चिट्ठी होती है मैंने किसी के मौत का समाचार होता है, उसने ध्यान नहीं दिया दे दी, उनने इतना पढ़ा तो लिखा था तुम्हारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, रख दिया परीक्षा का उत्तर लिखने लग गया, अब जब बाद में उसकी न्याय गई निरीक्षक की कि एक कारण में खूंट पटा है, किसी के मरने की समाचार आए हैं, इसने पढ़ लिया है और फिर भी जो नॉर्मल तरीके से पेपर लिख रहा है तो कोई गलत कुछ बात है। तो जब वो परीक्षा खत्म हो गई तो ने क्यों क्या है, कौन मर गया है, क्यों मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, क्या पत्नी का स्वर्गवास हो गया क्या? हाँ, वो तुम पेपर लिखते रहे, आप बताओ क्या करता पता क्यों कार्य कर रहा हूं। अरे पत्नी मर गई तो क्या कर, मर गई अच्छा जरूर तुम्हारा झगड़ा रहता होगा। अरे हमारा तो जिंदगी में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, तो तुम्हें रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ क्या? अब हो गया वो हो गया, क्या क्या करें? यदि वो जिंदा रहती तो बहुत अच्छा होता। मैं कोशिश करता तो उसका भी भव सुधर जाता, और मर गई तो उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ। क्यों? अब मेरे गोधर का विकल्प टूट गया, अब मुझे घर जाने का विकल्प का काम ही नहीं रहा, अब तो मैं बस अपने में जाऊंगा। अरे पता क्यों का आज समझ में आया कि नहीं आया? माँ है उससे हमें क्या? तो कहते देखो क्या अपन क्या पढ़ रहे थे, कौन सा 184 में गया था, जह कनक मग्न तबियम पिय कनक भावम तम पर चैरी। आ गया ना वही आगे बात कि जिस तरह कोन सोने को अग्नि में तपाओ, है ना, कणय माने सोना, अग्नि तवियम आगि में तपाओ, जह कणय अग्नि तवियम, आ गया ना क्लियर, कणय भावम नहीं परिचयदी, वो सोना लोहा नहीं हो जाता है, वो कनक भाव को सोनेपन को छोड़ता नहीं है, तो अपनों कोई चिंता नहीं है, जला जला दे ना, तो एक रत्ती कम होने वाला है और ना वो सोना से लोहा होने वाला है। जैसे अग्नि में तपाया हुआ सोना कनक भाव को नहीं छोड़ता है, सोनेपन को नहीं छोड़ता है, वैसे ही कमोदय तभियो कर्म के उदय से तपा हुआ आत्मा ज्ञानी दुणानत्व न जहरी, वो ज्ञानपने को नहीं छोड़ता है, उसका ज्ञानपना कायम रहता है। नानी माने तुम अनादि काला आत्मा लाओ अगर तो आत्मा का आत्मापन नहीं छोड़ता, और सम्यक ज्ञानी लगाओ तो सम्यक ज्ञानपना नहीं छोड़ता क्या? वो कहते हैं कि अग्नि में तपाने से सोने से तुम डर क्यों रहे हो, कर्म का उदय आ जाएगा तो इसमें घबराने की क्या बात है, मेरे पाप कर्म का उदय नहीं आ जाए, न मालूम कौन हो गए पाप कर्म का उदय आया था, न मालूम मैंने कहने कहा। अब बेचारी सीता तो रो रही थी जंगल में, हे भगवान मैं कैसी, हमने कोई ऐसा पाप किया नहीं है, मैं तो किसी को लांछन लगाया नहीं है, मेरे ये पाप कर्म का उदय कहां से आ गया? क्यों? एक तो इसका उत्तर ये है कि कोई आचार्य उसके पूरा भव बताने लग जाए और ये कहने लग जाए कि तूने फलाने भव में फलानी चिड़िया के साथ ऐसा किया था इसलिए तेरे को आया है। क्यों? वो कहते हैं ना, मैंने ऐसा पाप तो कभी कब किया था, मैं तो कभी किया ही नहीं ऐसा पाप, तो आप पूरा भवों में जाकर के बताओ कि ये कब किया था। लेकिन वास्तव में भले ही वो ये कह रही कब किया था, लेकिन वह अकाउंट थोड़ी मांग रही भैया हमने तुमसे पैसा कब लाए थे जो तुम मांग रहे हमसे। क्यों? वो तो वो अनिष्ट है संयोग, उसके प्रति अपनी अरुचि व्यक्त कर रही है, बस खत्म। वो कब का आपका हिसाब कहीं चाहिए क्या? तो उसका क्या जवाब है? एक तो वो जवाब है कि बता दे तब का है, और एक ये जवाब है कि क्या है तुम्हें, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, आएगा उदय में आएगा, खिल जाएगा, चल जाएगा। ये दुनिया बक रही ना, गांव गांव में निंदा हो रही है हमारी, पर हमें कुशील माना, कुशील बच्ची माना जा रहा है, तुम्हारा क्या फर्क पड़ रहा, मान लो उसकी मान्यता झूठी हुई ना, सुनना
मैं तो नहीं हूं ना कुशीलवती, फिर मुझे क्या कहना है? लेकिन नंगा हो रही ना कि हूं दो, वो तो ऐसे स्कीर्ति कर्म का उदय काम है। और इस स्कीर्ति आएगी तो एक मिनट में उसी से प्रशंसा होने लग जाएगी। निंदा और प्रशंसा से तेरे सील का कोई संबंध नहीं है। क्या इसलिए तो तेरा सील नहीं गया ना, चिंता तो सील की है। यदि तेरा सील चला जाए तो तू फिक्र कर, लेकिन ये सारे जगत के लोग आज दुनिया मुझे बेईमान समझ रही है, तू बेईमान नहीं है ना, तो फिक्र मत कर। लेकिन किसी को भी बेईमान होने में तकलीफ नहीं है, दुनिया बेईमान समझे इसमें तकलीफ है। उसको दुनिया की समझ ठीक करनी है, अपने को स्वयं को ठीक नहीं करना है। ऐसे कर्मों की अग्नि से तपा हुआ आत्मा आत्मापने को नहीं छोड़ता, तो आत्मा आत्मापने को नहीं छोड़ता तो ज्ञानी ज्ञानीपने को क्यों छोड़े? बहुत उदाहरण आते हैं ना कि एक साधु महाराज थे, तो वो एक बिच्छू बिल्कुल गर्म रेत में तप रहा था, थोड़ी देर में जल जाएगा वो, तो उन्हें दया आई तो बिच्छू को उठाकर उन्हें कहा छाया में इसे कर दूं, तो जब वो उठाए तो बिच्छू उसे काट काटे तो हाथ से छूट जाए, फिर वहीं गिर जाए। फिर बार बार कोशिश कर रहे थे, किसी ने कहा महात्मा जी ये मत करो, वो नहीं जाएगा, उसे वहीं जलना है, वो तुम्हें देखो काटता है, उसका ऐसे ही नेचर है, वो हेल्प करने वाले को भी काटेगा। अब वो कह जाने तुम हमारी हेल्प कर रहे हो तो मारने ले जा रहे, भट्टी में डालने ले जा रहे, वो उसे क्या बेचारे को पता है? क्यों वो तो अग्नि से उससे भी बचने की कोशिश कर रहा है और इससे भी बचने की कोशिश कर रहा है, हम उसे दुष्ट मान रहे हैं, हाँ दुष्ट है, तो जो बचा रहा है उसी को काट रहा है। तो उसने कहा कि बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, तो मैं बिच्छू से भी गया देता हूं कि अपने स्वभाव को छोड़ दूं, मैं तो उससे दया करूंगा। यही बात है कि अग्नि तवियम सुवर्णम सुवर्णत्वम न त्यजति, अग्नि से तपा हुआ सोना सोनेपन को नहीं छोड़ता, ऐसे ही ज्ञानी कर्मोदय से भी ज्ञानीपन को नहीं छोड़ते, है ना? एवं जान दिराणी अन्नानी मुनदिरागमेवादम, एवं जाननी रानी, ज्ञानी तो ऐसा जानते हैं लेकिन अज्ञानी राग मेवादम मुरदी, राग अज्ञानी राग को ही चाहते, राग से भेद विज्ञान कराया था ना, ज्ञान और राग में संधि कराई थी ना, तो अब्बू की वापस लाए, परदेव की नहीं लाए, लेकिन अज्ञानी राग मेवादम मुरदी, राग को ही एव है ना, एव आदम माने आत्मा, मुड़दी माने जानता है, अज्ञानी राग को ही आत्मा जानता है ना। अन्नान तवो छन्नो, वो अज्ञान रूपी अज्ञान अंधकार से आछन्न है ना, आद स्वभावम अयानंतो, वो आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता है। माने ज्ञानी तो ज्ञान भाव नहीं छोड़ता और अज्ञानी अज्ञान भाव नहीं छोड़ता, तो असली बात तो आत्मा को जानने की रही। देखो ज्यो अग्नि से संतप्त सोना, स्पष्ट है ना, अर्थ में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना।
अब आत्मख्याति में इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, जिससे उपर्युक्त भेद विज्ञान है वह उस भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ, कौन सा ज्ञानी लेना है जिसको भेद विज्ञान है, इस प्रकार जानता है कि जिस प्रकार प्रचंड अग्नि से तप्त होता हुआ सुवर्ण सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय से घिरा हुआ होने पर भी ज्ञानी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों से एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। स्वभाव को छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा, वो स्वभाव ज्ञानी का स्वभाव है। देखो प्रथमान योग की जितनी कहानी कैसे है ना, इन सब पर मेरे को ऐसा विकल्प आता है कि इनको बिल्कुल नए सिरे से लिखा जा सकता है। जैसे कि मैना सुंदरी और श्रीपाल का नाटक है ना, क्या बोलते हैं उसे, अब उसका नाम भाग्य नाम से एक व्यक्ति ने लिखा था उसका नाटक, क्या नाम से लिखा, भाग्य नाम से। वो व्यक्ति जो थे मेरे जन्म होने के पहले ही मर गए थे, इसलिए मैं उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन अच्छे लेखक थे, कविताएं बहुत लिखी, क्या राम से दादा राम से एदमादपुर के थे वो, खैर कोई होगा नाम से कह रहे हैं। अब उसमें क्या लिखा है, मैना सुंदरी बार बार कहती है कि भाई मेरे भाग्य में जो लिखा होगा, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा, अब जैसे भाग्य किसी ने लिखा है और वो बस है बस, अब इसलिए भाग मैं अपने अपने बाप में भाग भाग्य की दुहाई देती हूं। अब वो सचमुच वो व्यक्ति भाग्य शब्द का अर्थ भी नहीं समझता, आप लोग कितना समझते मैं नहीं जानता, हम तो मैंने कहा पुरुषार्थ और भाग्य, भाग्य मैंने मुफ्त में मिल गया और पुरुषार्थ से मैंने कोशिश करके प्राप्त किया, लेकिन समंत भद्राचार्य ने देवागम स्तोत्र में की जो टीका लिखी ना, खासकर अशस्त्री या सती जो भी उसमें, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भाग्य क्या है, दो चीजों के मिक्सर का नाम भाग्य है, एक तो नियति माने कर्मबद्ध पर्याय और एक कर्म का उदय, हमने अकेले पूर्व कर्म के उदय को भाग्य समझ लिया, वो तो निमित्त है, और नियति जो है ना कर्मबद्ध पर्याय जो होना है वो नक्की, इन दोनों की मिले हुए का नाम भाग्य है। तो उनने भाग्य का अर्थ पूर्व कर्म का उदय समझ, पहला कर्म जो हमने किए थे वो जो हमें भाग्य कर्म बने थे और उनका उदय में आना उसका नाम भाग्य मानते हैं, और वर्तमान में जो हम करें उसको हम मानते हैं पुरुषार्थ, कोई कर्म ही नहीं, कर्म में कर जो कर्म करें, अब दो ही कर्म पे ही घटा दिए निमित्त पे ही, अब उपादान दोनों में ही गया है पुरुषार्थ, अब मैं लिखूं वो पूरा नाटक तो इतना बढ़िया हो जाएगा कि समझ लीजिए कि पूरा मोक्ष मार्ग उसमें आ जाएगा, बात घटना तो वही है कि उस मैना सुंदर जी का बाप उसे कहेगा कि मैं कोड़ी से शादी करेगा, क्यों वो कहेगी तो, लेकिन वो ये कहेगी कि जो जो नक्की है अनादिकाल से आप उसमें क्या कर सकते हो, मेरे भाग्य में लिखा है नहीं कहेगी, क्या तो आप समझिए ना, वो जितना संवाद आएंगे वो सब इसी बात को बताएंगे, थोड़ा थोड़ा इसको भी कह देंगे, अरे वो कर्म भी तो उसी के अनुसार ही बंधे होंगे, अब आप समझे कैसा होगा, कैसी होगी वो नाटक कैसा होगा, इतने में समझ में आ गया क्या नहीं आ गया, इसलिए मैं ये बातें इसलिए कहता हूं जानबूझ करके कि भाई मैं नहीं लिख पाऊं तो नहीं लिख पाऊं, तुम्हारे लिए क्लू तो छोड़ जाऊं, इनमें से तुम लोगों में से कोई लेखक पैदा हो तो वो इसके आधार पर इसको पूरा बढ़ा सकता है, समझे ना, अपनी सारी कला उसमें घुसेड़ करके अब वो लोकप्रिय भी बना सकता है, लेकिन वो इतनी सशब्द भाषा में आना चाहिए कि उसमें वो पार्टी बंदी सी नहीं दिखे, कोई ग्रुपबाजी नहीं दिखे,
वो इतने सुंदर तरीके से आना चाहिए कि लोगों को वो गले उतरे। मैंने जो भाग्य शब्द का असली अर्थ है, कर्म का उदय, पूर्व कर्म का उदय और कर्मद पर्याय नियति, ऐसा समझना है। और पुरुषार्थ का अर्थ वहां क्या, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का इसका नाम पुरुषार्थ है, वो वर्तमान के विकल्प हैं तेरे। ये तू पुरुषार्थ कर रहा, मैंने बहुत कोशिश करी, 50 लड़के देखे, 100 लड़के देखे, तूने ऐसा किया, ऐसा किया, क्या किया, ये पुरुषार्थ है। ये गलत दिशा में तूने सारा कुछ किया और जो असफल हुआ और असफल ही होना था, क्यों तो ये कहता है मैं तो बहुत किया, क्या कुछ नहीं किया है? सेंटर आइडिया ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया, लिखना कोई, मैंने लिख पाऊं तो लिखना और मैं लिख दूं तो भी लिखना, ऐसा नहीं कि जो जो मैंने लिख दिया उसको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करके, लेकिन ऐसा नहीं करना कि तुम ऐसे लिखो कि जिससे जो श्रद्धा इससे पैदा हुई बाबी दिख जाए। जगत में वो तत्व ज्ञान गहराई से प्रवेश करे है? क्या कि तुम उग्रता में ऐसा लिख दो कि 10 आदमी विरोध में खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं ये बात गलत है, ऐसा था ही नहीं, ऐसा था ही, सब नाटक बिगड़ जाएगा बेचारे का। तो कोई एक जगह दो चार जगह बिगड़ा तो फिर वो कोई नाटक करेगा नहीं, उस नाटक को कोई करेगा नहीं। मेरे मतलब समझे, इस सारे एंगल जो मूल तत्व ज्ञान है उसके आधार पर उसमें किया जाता है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जिनने वो ऐसा किया ऐसा किया वो सब ज्ञानी आ गया, वो तो पंडित था ना इसलिए मैंने कह दिया है। अब बाकी भट्टारक बहुत हुए हैं, फिर आता इनके नाम से आचार्य लगा हुआ है, वो झगड़े में ज्यादा नहीं पड़ना। शांति से जो असली चीज है उसे बिल्कुल विनय भाव से प्रस्तुत करना, किसी के विरोध के लिए नहीं। मूल तत्व ज्ञान जिसको हमें देना है उस तक पहुंच जाए, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए। किसी को हराना, किसी को मूर्ख बताना कि कोई कुछ नहीं समझता है, ये बताना देखो कुछ भी नहीं समझता था, मैंने बताई, इसमें तो कुछ दम नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं।